بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. آج بھی وہی مجلس ہے، 57، کینا اور اس کا علاج. کل کینا پر وعید بتائی تھی کہ کینا رکھنے والے کی شب برات لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. دو شخص ہے جن کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، ایک ٹخنوں سے نیچے پاجا لٹکانے والا اور دوسرا دل میں دشمنی اور کینا رکھنے والا. اب سنیے آج کینا کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں. جی، کینا وہ ہے جو اختیار اور قصد سے کسی کی برائی اور بدخواہی دل میں رکھی جائے. دیکھو کینا کیا ہے، وہ ہے جو اختیار اور قصد سے کسی کی برائی اور بدخواہی دل میں رکھی جائے اور اس کو ایزا پہنچانے کی تدبیر بھی کرے. آگے اس کی تشریح سنو. اپنے اختیار سے کسی شخص کی بدخواہی دل میں پالی، اختیار سے، اور اس کی تدبیر بھی کر رہا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس کا نقصان ہو اور اس کو تکلیف دینے کے پیچھے لگا ہوا ہو، اس کو کینہ کہا جاتا ہے. ویسے ہی دل میں اس کو دیکھتے ہی پچھلی بات یاد آ گئی اور دل میں غصہ اور وہ آ گیا، تو وہ نہیں ہے کینہ. یاد رہا، وہ بھی ہے لیکن اس پر پکڑ نہیں ہے کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. وہ ہے کہ جس میں دل میں بدخواہی ہو اور پھر اس پر تدبیر بھی کر رہا ہو کہ اس کو تکلیف پہنچاؤ اور اس کے پیچھے پلاننگ بنا رہا ہو، تو اس کو کینہ کہا جاتا ہے. کینہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ یہ کینہ اکثر اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے آپ کو کوئی رنج یا کوئی تکلیف پہنچی، اس رنج اور تکلیف پہنچنے کے نتیجے میں آپ کو اس پر غصہ آیا. تکلیف پہنچی ہے تو اس پر آپ کو غصہ آیا اور دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچاؤں، لیکن جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ یا تو عمر میں تم سے بڑا ہے یا مرتبے میں تم سے بڑا ہے اور تمہارا اس کے اوپر بس نہیں چلتا، اور بس نہ چلنے کی وجہ سے تم اس سے انتقام نہیں لے سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے، اور تمہارے پاس انتقام لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا ایک طرف تو غصہ آ رہا ہے اور طبیعت میں اس کے خلاف گٹن ہو رہی ہے، اٹن ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف دل میں جذبات پیدا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ان جذبات کے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دل کے اندر گٹن پیدا ہو رہی ہے، وہ گٹن انسان کے اندر کینہ پیدا کر دیتی ہے. اب سمجھ گئے کینہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، وہ بات بتائی کہ وہ گٹن جو بدلہ نہ لینے کی وجہ سے دل ہی دل میں جو غصہ ہے وہ کینہ پیدا کر دیتی ہے. چنانچہ وہ سوچنا ہے کہ اس وقت تو مجھے بدلہ لینے کا موقع نہیں ہے، لیکن جب کبھی موقع ملا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ کینہ ہے. اب وہ موقع کب ملتا ہے؟ کبھی کبھی بعض انسان دل میں ایسی رکھتے ہیں کہ 4 سال، 5 سال، 10 سال کے بعد بھی اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ لیتے ہیں. اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ کینہ ہے. کیوں؟ خاص کر کے کرسیوں کا جھگڑا بہت ہوتا ہے. آج اگر کوئی کرسی پر ہے और उससे हमारी किसी से दुश्मनी हो गई, दिल में कीना आ गया, क्योंकि अब तो उसके पास कुर्सी है, कुर्सी समझिए ना, हाँ, ओहदा, मिनिस्टरी या जो भी हो, तो उसके पास कुर्सी है, तो आज मैं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कल उठ के वो उतर गया और मैं कुर्सी जीत गया जी, तो अब क्या होगा, अब मेरे पास कुर्सी है, अब मैं अपना वो कीना अब निकालूंगा। तो ये होता है कि यहां पर बहुत होता है कि इंसान फिर कई सालों के बाद उसको भी कुर्सी मिल जाती, या उसकी कुर्सी तो उतर गई लेकिन अब वो इज्जत भी उतर गई, अब किसी मामलात में किसी तरह से उसको करते हैं। और वो घुटन इंसान के अंदर किना चुना चाहिए, वो सोचना कि इस वक्त तो मुझे बदला लेने का मौका नहीं है, लेकिन जब कभी मौका मिला तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये कीना है, ये ख्याल गुना नहीं। कौन सा? और अगर दिल में इतना ख्याल हो कि जब मुझे मौका मिलेगा तो जितनी तकलीफ उसने पहुंचाई थी मैं भी उतनी तकलीफ पहुंचा दूंगा, तो ये गुनाह की बात नहीं, क्योंकि शरीयत ने ये हक दिया है कि अगर किसी दूसरे शख्स ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है तो तुम भी उसको उतनी ही तकलीफ पहुंचा सकते हो, तुम भी उसको उतनी ही तकलीफ पहुंचा सकते हो, क्योंकि तकलीफ पहुंचाने पर जो तकलीफ हुई है ना उस पर तो कीना है। तो अब इंसान बदला लेना चाहता है तो उतना ही ले जितनी उसने तकलीफ पहुंचाई, लेकिन ये गुस्सा और ये घुटन इंसान के दिल में ये जज्बा पैदा कर देती है, जज्बा पैदा कर देती है कि अगर मेरा काबू चल गया तो उसने जितनी तकलीफ मुझे पहुंचाई है उससे 10 गुनी तकलीफ मैं उसको पहुंचाऊंगा। क्योंकि जो आदमी हुदूद का पाबंद नहीं होता, जो आदमी हुदूद का पाबंद नहीं होता वो कभी हद पर नहीं रहता। जो लोग आपस में गाली गलौज करते हैं उनका तरीका ये है कि जब एक ने गाली दी कि तू अहमक और बेवकूफ है, तो दूसरा जवाब में फौरन ये कहेगा कि तू बेवकूफ, तेरा बाप बेवकूफ, तेरा दादा बेवकूफ। तो अब देखो, उसने तो बाप को कहा था, उसने तो तू बेवकूफ कहा था, इसने ऊपर से क्या कहा, उसको तो बेवकूफ बनाया, उसके बाप को भी बनाया, उसके दादा को भी, उसको बोलते हैं हद से आगे निकल गया। एक मिसाल। अब गुस्से में इंसान काबू से बाहर निकल जाता है, अल्फाज पर कंट्रोल नहीं रहता है, और उसका हर अल्फाज अल्लाह ताला उसको पकड़ रहे, उसका वजन होगा। कुरान में आया है कि तुम जो भी लफ्ज जबान से निकालते हो उसके ऊपर कोई न कोई फरिश्ता मुकर्रर है, मा मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, उसके ऊपर निगरानी है। तो अब उसने तुमको बेवकूफ कहा तो तुम उसको बेवकूफ कह दो तो ठीक है, लेकिन ये कर दिया, वो कभी एक पर इक्तिफा नहीं करेगा बल्कि बाप दादा तक पहुंच जाएगा। तो जिस शख्स के अखलाक का तस्किया न हुआ हो वो कभी हद पर कायम नहीं रहता, वो कभी हद पर कायम नहीं रहता। जैसा कि अरबी का मकूला है, अल जाहिलु इम्मा मुफरितुन औ मफरतुन, जाहिल का जज्बा सिर्फ एक मर्तबा बेवकूफ कह देने से ठंडा नहीं होता, जाहिल का जज्बा सिर्फ एक मर्तबा बेवकूफ कह देने से ठंडा नहीं होता बल्कि और आगे बढ़ता है। इसी तरह जब दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का मौका आ जाए तो उसमें हद पर नहीं रहेगा। मसलन किसी ने उसको एक हाथ मारा तो वो जवाब में दो हाथ मार देगा, लिहाजा जब आगे बढ़ने का जज्बा मौजूद है तो वो दिल में ये ठाने हुए है कि जब कभी इंतकाम का मौका मिलेगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं। ये बदख्वाही जो दिल में पैदा हो रही है यानी जज्बा लेने का बदला है, एक तो जज्बा लेने का बदला नहीं है लेकिन याद आ रहा है बार बार, उसका नाम होते ही उसको देखते ही बार बार याद आ रहा है, तो उस पर कोई पकड़ नहीं, वो तो तकलीफ है, वो फितरी चीज है। लेकिन यह है कि उसका बाकायदा प्लानिंग बनाना, उसको भूलना ही नहीं, तो ये है, ये कीना है, उसी का नाम कीना और बुग्ज है, बुग्ज भी उसी को कहते हैं। और उसको आसान अल्फाज में कहेंगे अंदर की दुश्मनी, उसको कहते हैं अंदर की दुश्मनी। कीना और बुग्ज है, इस कीना का नतीजा ये होगा कि जहां उसको तकलीफ पहुंचाने का मौका होगा तो उसको तकलीफ पहुंचा देगा, जहां बदनाम करने का मौका आएगा वहां बदनाम कर देगा, जहां उसकी गीबत करने का मौका मिलेगा तो उसकी गीबत कर देगा, उसकी गीबत कर देगा, जहां जबान से उसकी दिल आजारी का मौका मिलेगा तो जबान से दिल आजारी करेगा, तंज और तान के तीर उसके ऊपर बरसाएगा, ताना देगा। इन सब कामों का सबब बुग्ज और कीना है, इस कीना और बुग्ज का इजाला जरूरी है। अब कीना समझ में आ गई किसको कहते हैं, हाँ ये याद रखिए, क्योंकि ये एक तो है कि दिल में तकलीफ हुई वो तो फितरी चीज है, अब बदला लेने का, अब ठंडा हो गया उसने निकाल दिया दिन, अब सामने वापस कोई आ जाता है या उसका तस्करा छेड़ देता है तो फिर दिल में तकलीफ होती है, तो फिर उस पर कोई पकड़ नहीं, ये फितरी चीज है, ये तो होगा। लेकिन ये है कि उस दुश्मनी को संभाले हुए है, याद किए हुए है, मौका ढूंढ रहे हैं उसके लिए और प्लानिंग बना रहे हैं, तो फिर ये कीना है। अब ये साल 2 साल तक चलेगा तो ये ज्यादा अंदर 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 हमारी नेकियां भी खत्म होगी, हमारी दुआ भी कबूल नहीं होगी, और मुबारक रातों में भी दुआएं कबूल नहीं होती अगर दिल ही दिल में रखते हैं। इंसान के पास तराजू नहीं है, मिजान नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने आपको यह हक दिया है कि जिस शख्स ने आपको जानबूझकर तकलीफ पहुंचाई है तो आप उससे इंतकाम ले सकते, बदला ले सकते, मगर उतना ही इंतकाम ले सकते हैं जितनी तकलीफ उसने पहुंचाई, उससे ज्यादा नहीं, ये हद मुकर्रर है, इससे आगे बढ़ना जायज नहीं। इससे आगे बढ़ना जायज नहीं। लेकिन ये कैसे पता चले कि किस मौका पर इंसान सरहद पार कर गया, हद पर है या हद से आगे निकल गया, ये कैसे पता चलेगा? इसलिए कि इंसान के अपने पास कोई ऐसा उसका मिजान नहीं है जिससे वो ये पता चलाए कि मैं किस मौका पर हद पर कायम रहा और किस मौका पर हद से आगे बढ़ गया, कहां मैं नफसानी जज्बे को ठंडा करने के लिए इंतकाम ले रहा हूं और कहां मैं अल्लाह के लिए बदला ले रहा हूं, उसका पता नहीं चलता। बाद मरता बदला ले रहा है लेकिन बदला अंदर की दुश्मनी की वजह से ले रहा है या बदला अल्लाह की रजा के लिए ले रहा है? हाँ, अल्लाह की रजा के लिए भी बदला होता है, अल्लाह के लिए बदला कर रहा है, हाँ, और एक नफ्स के लिए हो रहा है। अब इसमें फर्क नहीं कर पाता है, हर इंसान नहीं कर पाएगा। अब हजरत अली रजी अल्लाह अनु का एक किस्सा है, उससे समझिए इस बात को। हजरत अली रजी अल्लाह अनु का वाकया है कि एक मर्तबा एक यहूदी ने उनके सामने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला कर दिया, गुस्ताखी का कलमा कह दिया, कलमा कह दिया, अलायाजु बिल्ला, हुजूर की शान में हजरत अली को गुस्ताखी का कलमा कह दिया तो बजाहिर बात है कितना गुस्सा आएगा। तो हजरत अली रदिल्लाहु अन्हु कहां बर्दाश्त करने वाले थे, तो उन्होंने उसको पकड़ कर जमीन पर गिराया, उसको पकड़कर जमीन पर गिराया, अब उसके सीने पर सवार हो गई। जब यहूदी ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने नीचे पड़े पड़े हजरत अली रदिल्लाहु अन्हु के मुंह पर थूक दिया। क्या किया? अब थूक दिया। जब यहूदी ने थूका तो हजरत अली रदिल्लाहु अन्हु उसको छोड़कर खड़े हो गए, लो छोड़कर खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि अब तो और ज्यादा सजा देने जाने के लायक था और आपने उसको छोड़ दिया। अल्लाह, क्या ईमान था उन लोगों का। हजरत अली रदिल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अब तक तो मैं इससे इसलिए लड़ रहा था कि उसने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, लिहाजा मेरी इसके साथ जो लड़ाई थी वो अपनी जात के लिए नहीं थी बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। लेकिन जब उसने मेरे मुंह पर थूक दिया तो मुझे गुस्सा आया। पहले तो गुस्सा अल्लाह के रसूल के लिए था, अब गुस्सा मुझे आया और उससे इंतकाम लेने का जज्बा पैदा हुआ। लिहाजा अब अगर मैं उसे बदला लेता तो अपनी जात के लिए बदला लेता, और अपनी जात के लिए मैं बदला लेना नहीं चाहता। अल्लाह है कोई इतना कंट्रोल करने वाला कि जो ये भी देखता हो कि मेरा इसका गुस्सा किसके लिए है, फिर बाद में किसके लिए हो गया। पहले तो गुस्सा था अल्लाह के लिए, लेकिन बाद में किसी और हरकत की वजह से वो गुस्सा नफ्स के लिए हो गया, हमें पता भी नहीं, और हम समझ रहे कि अल्लाह के लिए उसको बदला ले रहे हैं, हालांकि उसने ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से हमारा नफ्स और ज्यादा गुस्से में आ गया। तो देखो कई इसको कहते हैं कि दिलों पर कैसी नजर थी, कैसी नजर थी कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, और उस वक्त में भी इनकी नजर कितनी थी कि बोले अब नफ्स को गुस्सा आ गया, अब छोड़ दो। अल्लाह क्या कंट्रोल कर रहे थे। इसको कहते हैं ईमान। ये ईमान वाले थे कि जब मोमिन जो होता है वो हर वक्त देखता है कि अभी मेरे मेरे को गुस्सा किसके लिए है और अभी किसके लिए है, वो हर वक्त देखता है मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए। क्योंकि हर इंसान काम जब शुरू करता है तो अल्लाह के लिए करता है, लेकिन करते करते नियत बिगड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। इसलिए तबलीग में कहा जाता है इखलास नियत के बाद पर सिफत पर, कहा कि देखो हर काम अल्लाह के लिए करो, तो शुरू में नियत टटोलो और बीच में भी नहीं, शुरू में तो नियत करो और बीच में नियत को टटोलो, और आखिर में अस्तगफार करो। बीच में नियत को इसलिए टटोलना है कि मेरी नियत अब बदल तो नहीं गई कि मैं पहले किसी और के लिए कर रहा था अल्लाह के लिए, और अब किसी और के लिए कर रहा हूं, तो इसलिए हमेशा काम को करते रहो। एक इंसान किसी को सदका दे रहा है, रोजाना दे रहा है, अल्लाह के लिए दे रहा था, नियत तो यही थी, लेकिन बीच में उसकी नियत बिगड़ गई कि चलो यार इससे फायदा हासिल करे, उससे ये काम ले ले, उससे ये ले लो, उसके पास ये भी आता, अब लो तुम उसकी, अब क्या हो गया, अब तुम्हारा किसी काम के लेने के लिए सदका हो गया। तो ऐसा होता रहता है। आज हम किसी पर एहसान भी करते हैं तो शुरू में तो अल्लाह के लिए किया, बाद में नफ्स के लिए हो गया। तो इसलिए काम को करना अल्लाह के लिए, बीच में भी उसको और आखिर में करने के बाद भी इस्तिग़फ़ार करना कि या अल्लाह ये जो काम मैंने तेरे लिए किया था, पता नहीं इसमें इतना हक अदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं तो थोड़ी गड़बड़ हुई जो मुझे पता नहीं चला, अल्लाह को तो पता है। इसके लिए इस्तिग़फ़ार करना, उसकी शायन शान नहीं हुआ। इसीलिए तो फरमाया नमाज पढ़कर क्या फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। अब नमाज तो कोई गुनाह का तो काम किया नहीं, अब इस्तिग़फ़ार क्यों? अब अल्लाह के लिए तुमने इखलास से कोई काम किया, फिर आखिर में इस्तिग़फ़ार क्यों? हाँ जब गश्त किया, गश्त पूरा करके आए, तुम गए थे दावत देने के लिए, फरमाया वापसी में आओ तो इस्तिग़फ़ार करो, तो इस्तिग़फ़ार क्यों? नेकी का काम किया, अब इस्तिग़फ़ार क्यों कर रहे हो? नमाज पढ़ी, इस्तिग़फ़ार क्यों है? इखलास से काम किया, इस्तिग़फ़ार क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि इस काम का जो हक था वो हमने अदा नहीं किया। इसके अंदर जिस तरीके से होना चाहिए हमें पता चला कि मुझे मैंने अच्छा किया है, लेकिन अल्लाह के एतबार से तो उसमें कोई अच्छा नहीं हुआ, इसलिए फरमाया माफी मांगो। उस माफी मांगने पर अल्लाह को खुशी होती है और उसको कबूल कर लेते, अकड़ने का नहीं। तो इसके लिए हर अच्छे काम के बाद इस्तिग़फार है। आप समझ में आ गया? वरना सवाल पैदा, बोले नमाज पढ़िए फिर इस्तिग़फार क्यों करें, और गश किया बोले दावत का इतना बड़ा काम किया इस्तिग़फार क्यों करें? जी तो इसलिए तो फरमाया, इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने छोड़ दिया। ये थे सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया युज़क्कीहिम, यानी अल्लाह ताला ने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके तस्किये के लिए भेजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? सारे सहाबा के शेख थे, नबी थे, हम सब के शेख हैं, हम सब के नबी है, सबसे पहले वो नबी थे। तो नबी को क्यों भेजा था? इन सहाबा का तस्किया करने के लिए, इनके दिलों को साफ करने के लिए। दिलों को पाक भी करना है और दिलों को साफ भी करना है। जी पाक तो कहते हैं कुफ्र और शिर्क से, और साफ कहते हैं जो ऊपर ऊपर थोड़ा मैल आ जाता है, जो मिट्टी आ जाती है उससे साफ करना है। तो उनका तस्किया किया था। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर अब्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके तस्किए के लिए भेजा था। तस्किया, जी तस्किया कहते हैं साफ, दिलों को साफ करना, पाक करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके तस्किए के लिए भेजा था, चुनाचे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ऐसा तस्किया किया जैसा कि आपने हजरत अली रदिल्लाहु अन्हु के वाकये में देखा। इसको कहते हैं ये ईमान बना। तस्किया जो होता है, जैसे एक आईना होता है, आईने के ऊपर एक मिट्टी छा जाती है या कुछ ऐसा मैल आ जाता है, तो उसके ऊपर एक कपड़ा लगाते तो कैसा साफ हो जाता, तो अब हमारा चेहरा कितना साफ दिखता है, तो उसको कहते हैं तस्किया। तस्फिया, एक होता है साफ करना, एक होता है तस्किया, और एक उसके अंदर डब्बे लगे हुए हैं, उसी आईने में डब्बे लगे हुए हैं, तो डब्बियों को और दाग लगे हुए उसको साफ करना, और एक उसके ऊपर सिर्फ धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी उसको साफ करना, तो वो तस्किया है और वो तस्फिया है। तो ऐसे हमारे दिलों के अंदर एक तो कुफ्र शिर्क है, उसका तस्किया करना, फिर तस्फिया जो थोड़ी बहुत ये आ जाती है, यानी किसी के बारे में बदगुमानियां और गीबतें और कीना, अब इसका भी साफ करना। तो सहाबे किराम को ऐसे साफ कर दिया था कि उनको पता चलता था कि ये गुस्सा अब मेरे लिए है, पहले वाला गुस्सा मुझे अल्लाह के रसूल के लिए था। ये उनका इतना दिल साफ हो चुका था कि हर चीज को समझ सकते थे। तो फरमाया उनका ऐसा तस्किया किया। बहरहाल आदमी जब दूसरे से इंतकाम लेता है, बदला लेता है, तो आमतौर पर हद पर नहीं रहता, बल्कि हद से आगे बढ़ जाता है। और अगर इंतकाम न ले सका तो उसके नतीजे में कीना पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको, आमीन। ये कीना बड़ी खतरनाक बीमारी है। अब कीने का इलाज बताते हैं, क्योंकि इलाज भी जरूरी है। कीना कितनी खतरनाक बीमारी है, और कीना किसको कहते हैं, और कीना कैसे पैदा होता है, और उसको ये सारी चीजें तफसील से आ गई। अब कीने का इलाज, इसका इलाज भी वही है जो हसद का इलाज है, यानी अपने नफ्स पर जबर करके लोगों के सामने उसकी तारीफ करो, उसकी तारीफ करो और उसके हक में दुआएं खैर करो, उसके हक में दुआएं खैर करो। देखो तारीफ कब करना है, जब मेरे नफ्स के लिए गुस्सा आया है। लेकिन अगर गुस्सा किसी दीनी काम की वजह से आया है या किसी और वजह से आया है, तो फरमाया फिर वो कीना नहीं है, फिर वो अल्लाह के लिए है। किससे? दीन का नुकसान हो रहा है, उम्मत का नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से अगर दिल में है तो फिर ये कीना नहीं होगा, ये तो इबादत होगी। क्योंकि अगर ऐसे वक्त में जिसमें उम्मत का नुकसान हो रहा है और हमारे दिल में अगर ऐसी दुश्मनी आई जो अल्लाह के लिए हुई है, अब उसमें अगर हम तारीफ करने जाएंगे तो और ज्यादा खराबी होगी। जी वो तो और ज्यादा खराबी होगी। तो वो है जहां अपने नफ्स के लिए हो रहा है, 100% अपने नफ्स के लिए, और जहां उम्मत की खराबी के लिए हो रहा है कि कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से उम्मत गुमराही में जा रही है, उम्मत का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे वक्त में अगर उसके साथ में तुमने बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन दिल में रखते हैं कि नहीं इसको इस काम से बंद कराना है और उसको इस तरीके से करना है, तो फिर ये नहीं है, ये उम्मत को बचाने के लिए हो। जी तो लोगों के सामने उसकी तारीफ करो, ये जब नफ्स के लिए, और उसके हक में दुआ खैर करो कि या अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके दर्जात बुलंद फरमा। इनफरादी मसला जहां अपनी जात से ताल्लुक है और जहां जिसका ताल्लुक इज्तिमाइयत के साथ है, उम्मत के साथ में है, तो वहां पर उसूल फिर और होंगे। तो जिसे उम्मत का नुकसान हो रहा हो, उसका अपनी जात का नुकसान है, मेरे अपने जात का नुकसान है, तो ठीक है, दुनियावी नुकसान भी, अगर उम्मत का दुनियावी नुकसान हो रहा है तो भी उसमें ही है। तो आखिरत में उसके दर्जात बुलंद फरमाया, अल्लाह उस शख्स की तरफ से मेरे दिल में बुराई के पहाड़ खड़े हुए हैं, उसको दुनिया में भी तरक्की अता फरमा, आखिरत में भी तरक्की अता फरमा। यह है। इस तरह करने के नतीजे में सीने पर बहुत भार पड़ जाएगा, क्योंकि दिल में इसकी तरफ से कीना, बुग्ज और बदख्वाही है, और दिल तो ये चाह रहा है कि उसका मुंह नोच डालू, लेकिन जबान से उसकी तारीफ कर रहे हैं। याद रखे, ये सारा अपने नफ्स के इलाज के लिए है, लेकिन इज्तिमाई मसाइल आएंगे, उम्मत का नुकसान होगा, ऐसा करेंगे तो वो तो कहेंगे देखो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, देखो, तो वो तो नुकसान में और आगे बढ़ेगा। ये तो अपनी जाती मामला था, आपस में उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया, खत्म होगी बात। उसके लिए दुआ कर रहे हो कि अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमा, लेकिन इस बीमारी का इलाज भी यही है, कुरान करीम में इरशाद फरमा। ये जो इलाज था, समझ में आ गया, वमा वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, यानी ये काम वही कर सकता है जिसने अपने आप को सब्र का आदि बनाया हो, और ये काम वही कर सकता है जो बड़ा साहिब नसीब हो, जो बड़ा साहिब नसीब हो। उसके जरिए खुशखबरी दे दी कि जो शख्स ये काम करेगा वो बड़ा साहिब नसीब होगा, यानी बड़ा किस्मत वाला है, बड़ा नेक आदमी गिना जाएगा, जो इंसान अपनी जाती दुश्मनियों को दुनियावी अगराज के लिए लड़ पड़े, कुछ इस तकलीफ पहुंचा दी, एक दूसरे को माफ कर, माफी मांग ली ताकि इसकी दुआ कबूल हो जाए। भाई जन्नत इस कदर सस्ती नहीं है, जन्नत इस कदर सस्ती नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, बाज औकात जान की कुर्बानी देनी पड़ती है जन्नत कमानी है तो, और बाज औकात माल की कुर्बानी देनी पड़ती है, और बाज औकात जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ती है, और जज्बात की कुर्बानी बाज औकात जान और माल की कुर्बानी से ज्यादा सख्त होती है, लेकिन ये जज्बात की कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए देनी पड़ती है, बकौल किसी के, जान दी दी हुई उसी की थी, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, जान तो दे दी लेकिन उसका जो हक था वो अदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कुर्बानी दी है, 100% सही है, उसमें तो कोई गलत ही नहीं है, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वमा वमा कदरना का हक कद्र, वमा कद्रुल्लाह हक कद्रतिक, यानी अल्लाह ताला की ऐसी हमने हक अदा नहीं किया जैसा उसका करने का हक था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पूरा करके भी ये कह रहे हैं तो हम जैसे कहाँ कर सकते, तो हमें भी यही कहना चाहिए। इसलिए फरमाया हक तो ये है कि हक अदा न कर सके, इसलिए हर नेक काम करने के बाद इस्तिग़फ़ार इसीलिए है कि जैसा उसका हक अदा करना था वैसा नहीं कर सके, ये सुन्नत है, ये कहना चाहिए। हाँ, लिहाजा जिस आदमी की तरफ से दिल में नफरत पैदा हो रही थी उसी के हक में दुआ की, और जब अल्लाह ताला ये देखते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी खातिर ये काम किया, उसने मेरे खातिर अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशात को कुचला, अपने जज्बात को कुर्बान किया, और अपने दिल की आरजू और तमन्नाओं को खून किया, तो फिर अल्लाह ताला उसको बुलंद मकामात तक पहुंचा देते हैं। देखो, अपने अल्लाह के लिए हमने किया, जी तो नहीं चाह रहा था कि इसको माफ करूं, उसके माफी मांगू, लेकिन अल्लाह के लिए, का लैलतुल कद्र मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह के लिए इसको माफ कर दिया, ख्वाहिशात को तोड़ दिया, जज्बात को कुचल दिया, तो फिर अल्लाह ताला उसको कहां पहुंचाएंगे, ओह बहुत बुलंद मकामात तक पहुंचाएंगे। देखो, मकामात तय करने का एक रास्ता ये भी है कि नफ्स को कुचल लो, और ये रास्ता ज्यादा शॉर्टकट है, बहुत सिर्फ हिम्मत करनी पड़ती, हिम्मत। दूसरा रास्ता जो इबादतें करके, जिक्र, लंबी लंबी तस्बीहात घुमाकर, ज्यादा अस्कार करके, ज्यादा मामूलात पूरा करके, ये भी पहुंचाता है मकामत तक, लेकिन जरा वो लंबा रास्ता है, उसमें भटकने के चांस, गुमराह हो जाने के चांस ज्यादा होते हैं, और ये रास्ते ऐसे हैं कि इसमें तो कोई गुमराह हो ही नहीं सकता, 100% बुलंद मकान तक पहुंचेगा। इसलिए देख लो कौन सा रास्ता लेना है। बहरहाल पहला काम यह करो कि तुम्हारे दिल में इसकी तरफ से जो बुराई आ रही है, पहला काम यह करो कि तुम्हारी तरफ से कि तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से जो बुराई आ रही है उसको बुरा समझो कि मेरे दिल में जो बात आ रही है वो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बुरे ख्याल को दूर करने का एक तरीका हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, क्या यानी कोई मोमिन मर्द ला यफरुकु मोमिनुन मोमिनतन इन करिहा मिनहा खलकन रदिया मिनहा आखर खुलकन, यानी कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत के साथ बुग्ज न रखे। दरअसल ये मियां बीवी के ताल्लुकात के बारे में इरशाद है, मियां बीवी के ताल्लुकात के बारे में होता है ना, बाद मरता मियां बीवी के अंदर भी अंदर बुग्ज है, लेकिन क्या करे, बीवी कमजोर है, बोले मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन इसका तो बदला लेती, तो बीवी के अंदर एक बुग्ज होता है, कीना होता है। और बाद मरतबा मर्द के अंदर कीना है कि बीवी को छोड़ नहीं सकता, इसको रखना है, इसके बहुत सारे काम हैं और ये नुकसान होगा, छोड़ूंगा तो अब बदला नहीं ले सकता, तो दिल ही दिल में होता है। तो इसलिए पहले तो मियां बीवी अपने आप को कीने से पाक कर ले, जितने सुनने वाले सब आपस में बैठकर सुन रहे हैं ना, तो पहले अपने आप को कीने से वहीं से पाक कर ले, वरना पुराना गुस्सा भरा हुआ होता है। खैर अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। दरअसल ये मियां बीवी के ताल्लुकात के बारे में इरशाद है कि कोई शोहर अपनी बीवी से बुग्ज न रखे, क्योंकि अगर उसकी कोई बात नापसंदीदा है तो उसकी कोई बात तो पसंदीदा भी होगी, उसके अंदर बहुत सारे सिफात है, तो एक इलाज ये भी है कि उसके सिफात को सोचे, ये आया था ना, तो उसके जरिए से भी हमारा कीना निकल जाता है, सिफात और अच्छाई कि ये तो मेरे अंदर है नहीं, इसके अंदर कितनी अच्छी सिफात है। तो इस हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुग्ज दूर करने का तरीका बता दिया कि जिस शख्स की तरफ से दिल में बुग्ज पैदा हो रहा है उसकी अच्छाइयों की तरफ निगाह करो, ये है, और उसकी अच्छाइयां सोच सोच कर याद करो, यानी ये सोचो कि मेरे दिल में इसकी तरफ से जो बुग्ज पैदा हो रहा है वो उसके फुला सिफत की वजह से, फुला आदत की वजह से हो रहा है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ यही एक सिफत नहीं है, यही एक बुराई नहीं है, बल्कि उसके अंदर तो और बहुत से अच्छी सिफात भी है, फिर उन अच्छे सिफात को याद करो, उसके नतीजे में उस बुग्ज में कमी आएगी, उसका तस्किरा भी करो, उस अच्छी सिफात की तारीफ और उसके बताओ भी, तो उसके जरिए से क्या मोहब्बतें बढ़ेगी और हमारा दिल के अंदर से वो चीजें निकल जाएगी। कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। चाहे मियां बीवी के दरमियान में कैसी ही लड़ाई हो, लेकिन आखिर निकम्मा कोई नहीं है, ये भी काम के हैं, वो भी काम के हैं, ये बीच में नफ्स और शैतान आ जाते हैं और हो जाता है, लेकिन उसको निकालना, ये इसके सारे इलाज है, तो हमें ऐसा करना चाहिए, और कुछ ना हो तो किसी अच्छे नेक से इस बात का तस्करा करे जो हमको समझावे अल्लाह वालों के सामने। याद रखिए दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई ना हो, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो चीजें बनाई हैं उनमें न कोई सरापा सिया है यानी बुरा है, न कोई सरापा सफेद है यानी अच्छा है, बल्कि हर एक में कुछ अयूब भी है और कुछ अच्छाइयां भी। यही कुछ शायर ने कहा है, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, लिहाजा एक काम ये करो कि जिन अयूब की वजह से तुम्हारे दिल में किसी की तरफ से बुग्ज और कीना पैदा हुआ है, इन अयूब को थोड़ी देर के लिए फरामोश करो और इन अच्छाइयों की तरफ निगाह करो जो उसके अंदर मौजूद है, अच्छाइयों की तरफ निगाह करो जो उसके अंदर मौजूद है। चलो आज यहां तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह थोड़ा कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, बात समझ में आ गई कि ना किसको कहते हैं, कहां से पैदा होता है, फिर उसका इलाज बता रहे हैं, बहुत आसान है सुनने में तो, लेकिन अमली तौर पर हिम्मत करोगे बहुत बड़े दर्जात है। अल्लाह सबसे पहले मेरे अंदर से भी कीना को, दुश्मनी को निकाल दे, दिल को साफ कर दे, और तमाम सुनने वालों के दिलों को भी अल्लाह ताला उनके दिलों में से भी निकाल दे, एक नई जिंदगी मिलेगी। अगर निकाल देंगे तो थोड़ी देर के लिए हमें बहुत वो होगा, लेकिन ऐसा लगेगा और इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा जिसकी हद। इसीलिए कहते हैं बाज मरतबा इंसान नेक अमल कर रहा होता है लेकिन उसकी तरक्की नहीं हो रही। तो अक्सर मैं कहता हूं और किताबों में उलमा से सुना है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक गुना ऐसा है जिसकी वजह से इसकी तरक्की नहीं हो रही। अब इंसान वो याद नहीं करता, उसको याद ही नहीं आता कि मेरे पास क्या गुना, मेरी जिंदगी तो सही है। लेकिन बाद मरतबा ऐसा कीना दिल में लेके रख रहा होता है जो उसको भी पता नहीं होता, जिसको साफ नहीं किया होता है, जिसको दिल से निकाला नहीं होता है, लेकिन है। अब जब उसका मौका आएगा तो वही चीज वापस उभर आती है। तो याद रखे, इसीलिए ये मुराकबे की कसरत के जरिए से अल्लाह ताला हमें ऐसी ऐसी चीजें जो पुरानी दुश्मनी लड़ाइयां पता नहीं क्या क्या सब याद आएंगे, और हमारे भी जो करतूत हमने जो जवानी में किए हैं वो भी याद आते हैं, वो एक एक करके उससे तोबा इस्तिगफार करेंगे तो वो सब खत्म हो जाते हैं और हमारी जिंदगी पाक हो जाती है। हुकूक आते हैं तो हुकूक वालों का लिख ले का इसका हक मुझे देना है, तो उनके हकूक को अदा कर ले जी, तो इंशाल्लाह फिर इंसान की तरक्की हो जाती है। कहीं ना कहीं कोई गुना अटका हुआ होता है जो तरक्की में रुकावट बन रहा होता है। मुराकबा कर ले।